नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप संजीव कुमार वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, चौथे चरण में 80,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। पटना उच्च न्यायालय की मध्यस्थता के बाद राज्य की अदालतों में तृतीय और चतुर्वर्ग के कर्मचारियों ने हड़ताल समाप्त की। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने IGIMS पटना में बिहार झारखंड के सबसे बड़े कार्डिक कैथ लैब का किया उद्घाटन। और प्रदेश के अधिकांश भागों में पश्चिमी विक्षोभ के कारण ठंड में वृद्धि। मौसम विभाग का पूर्वानुमान, अगले दो दिनों तक सुबह के समय छाया रहेगा घना कुहासा। अब समाचार विस्तार से। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि राज्य की NDA सरकार युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। श्री चौधरी ने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि विद्यालय शिक्षकों के चौथे चरण की नियुक्ति में 80,000 से अधिक पदों पर भर्ती की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य के 75,000 स्कूलों में 7,00,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की योजना बनाई गई है। वेतन की असमानता को दूर करने और प्रोन्नति की मांग को लेकर राज्य की अदालतों में तृतीय और चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल स्थगित कर दी है। कल से सभी कर्मचारी अपने काम पर वापस लौट जाएंगे। बिहार राज्य सिविल कोड कर्मचारी संघ के अध्यक्ष राजेश्वर तिवारी ने बताया कि पटना उच्च न्यायालय की मध्यस्थता के बाद हड़ताल को मार्च के पहले सप्ताह तक स्थगित कर दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने आज इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में बाईप्लेन कार्डिक कैथ लैब सिस्टम और आपातकालीन विभाग के विस्तारित वार्ड का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री पांडेय ने कहा कि बिहार और झारखंड के इस सबसे बड़े कैथ लैब से हृदय और मस्तिष्क की जाँच में आसानी होगी।
पूरे बिहार और झारखंड में पहला मशीन और इकलौता मशीन है जो हृदय और मस्तिष्क का स्क्रीनिंग एक साथ करेगा और उपचार में सहयोग मिलेगा, तो ये बहुत बड़ा काम है। और बिहार और झारखंड में किसी भी अस्पताल में ऐसी मशीन नहीं।
केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में NDA की जीत सुनिश्चित है। नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री पासवान ने कहा कि राजद नेता तेजस्वी यादव NDA गठबंधन की लोकप्रियता से घबराए हुए हैं।
डर इस बात का कि जिस तरीके से एक विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ बिहार में NDA आगे बढ़ रहा है, इस बात की घबराहट मेरे छोटे भाई के मन में है और ये स्वाभाविक भी है। अभी जो 4 सीटों पर उपचुनाव हुए, जिसको सेमीफाइनल कहा जा रहा है बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले, उन उपचुनाव में 100% स्ट्राइक रेट रहा है NDA अलायंस का। मजबूत गठबंधन है, एक विनिंग अलायंस है और मैं मानता हूं कि इस बार बिहार विधानसभा के चुनाव में अप्रत्याशित जीत हम लोग के गठबंधन की होगी। 225 से ज्यादा सीटें जीतकर बिहार में हम लोग सरकार।
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा है कि विपक्ष के पास आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कोई मुद्दा नहीं है। आज शिवहर में जिला कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार निरंतर विकास कर रहा है।
पांचों दल के कार्यकर्ता आपस में बैठकर, आपस में एक दूसरे से बातचीत करके और एक साथ आगाज करके अपने चट्टानी एकता के साथ आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए पांच पांडव के तरह आपस में एकजुट होकर के आने वाले 2025 के चुनाव के लिए तैयार होना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय नीतीश कुमार जी कंधे में कंधे मिला करके बिहार को आने वाले समय में विकसित बिहार बनाने का जो सपना सब लोगों ने देखा था, उसे पूरा करने का काम कर रहे हैं।
राज्य के ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा है कि बिहार में कांग्रेस पार्टी राजद के भरोसे राजनीति कर रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की कल प्रस्तावित बिहार दौरे पर निशाना साधते हुए श्री चौधरी ने कहा कि कांग्रेस का बिहार में अपना कोई जनाधार नहीं है।
कांग्रेस को अभी दिल्ली में जिस तरह से उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में हमारा अलायंस था, ने लोगों का बिहार में मनोबल न गिरे, इसलिए राहुल गांधी जी आ रहे हैं। इम्पैक्ट राहुल जी पहले भी आ चुके हैं, लेकिन पिछले लगभग 3 दशक से RJD के सहारे ही बिहार की राजनीति कर रहे हैं।
जदयू के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व सांसद मंगनी लाल मंडल राजद में शामिल हो गए हैं। राजद नेता तेजस्वी यादव ने पटना स्थित पार्टी के प्रदेश कार्यालय में उन्हें सदस्यता ग्रहण कराई। इस अवसर पर मंगनीलाल मंडल ने कहा कि वह अपने पुराने घर लौट आए हैं। उन्होंने कहा कि जदयू में आंतरिक लोकतंत्र नहीं है। इस अवसर पर श्री यादव ने कहा कि श्री मंडल के आने से पार्टी मजबूत होगी। निगरानी विभाग ने बिहार पुल निर्माण निगम के प्रोजेक्ट इंजीनियर जंग बहादुर सिंह के कई ठिकानों पर छापेमारी में करोड़ों रूपये की चल अचल संपत्ति जब्त की है। आय से अधिक संपत्ति मामले में न्यायालय से सर्च वारंट मिलने के बाद यह छापेमारी की गई। विभाग ने जंग बहादुर सिंह के पटना स्थित पुनाईचक और वेद नगर मोहल्ला, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड स्थित कार्यालय और बक्सर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के दुधानी गांव में छापेमारी की। अखिल भारतीय पीठासीन पदाधिकारियों का सम्मेलन 20 और 21 जनवरी को पटना में आयोजित होगा। सम्मेलन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, विभिन्न राज्यों के विधानसभा अध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति भाग लेंगे। इससे पूर्व 19 जनवरी को पटना में देश के सभी विधानमंडलों के सचिवों की बैठक आयोजित की जाएगी। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष नंदकिशोर यादव ने सम्मेलन की तैयारियों का मुआयना करने के बाद कहा कि अधिकारियों सहित अन्य अतिथि विकसित होते बिहार की झलक भी देख सकेंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna पर जा सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में 2024 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान किए। विश्व शतरंज चैंपियन डी मुकेश, पेरिस ओलंपिक्स में दो पदक विजेता मनु भाकर, पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और पेरिस पैरालंपिक्स में स्वर्ण पदक विजेता प्रवीण कुमार को प्रतिष्ठित मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
यह पुरस्कार पिछले 4 वर्ष में खिलाड़ियों के शानदार और सर्वाधिक असाधारण खेल प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। पैरा निशानेबाज कोच सुभाष राणा, निशानेबाज कोच दीपाली देश पांडे, हॉकी कोच संदीप सांगवान, बैडमिंटन कोच एस मुरलीधरन और फुटबॉल कोच अर्मांडो एग्नेलो कोलाको को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया। एथलीट ज्योति यर्राजी और अन्नु रानी, मुक्केबाज नीतू और स्वीटी तथा पैरा तीरंदाज राकेश कुमार सहित 32 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एथलीट सच्चा सिंह और पैरा तैराक मुरलीकांत पेटकर को लाइफ टाइम अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में समग्र रूप से शीर्ष प्रदर्शन करने के लिए चंडीगढ़ विश्वविद्यालय को मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी प्रदान की गई। पल्लवी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
अब खबरें महाकुंभ से। प्रयागराज में जारी महाकुंभ में श्रद्धालुओं और तीर्थयात्रियों को बेहतर चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने श्रद्धालुओं की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए महाकुंभ मेला क्षेत्र के परेड ग्राउंड में 100 बिस्तरों वाला केंद्रीय अस्पताल स्थापित किया है।
महाकुंभ 2025 के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ साथ सरकार ने चिकित्सा सुविधाओं को भी उच्च प्राथमिकता दी है। केंद्रीय अस्पताल के अलावा संक्रामक रोगों के प्रबंधन के लिए मेला क्षेत्र में 2 समर्पित अस्पताल भी स्थापित किए गए हैं, ताकि देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में केंद्रीय अस्पताल के नोडल अधिकारी डॉक्टर गौरव दुबे ने बताया कि अस्पताल में पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड हैं, साथ ही ICU और आपातकालीन सुविधाएं भी उपलब्ध हैं।
ये 100 बेड का केंद्रीय चिकित्सालय है, जिसमें 45 बेड पुरुषों के लिए, 40 बेड महिलाओं के लिए आरक्षित है, 5 बेड का हमारा पीडियाट्रिक वार्ड है बच्चों के लिए, 10 बेड का ICU है, लेबर रूम, माइनर और मेजर OT की फैसिलिटी हमारे पास। इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट कैटेगरी के स्पेशलिस्ट हैं, जिसमें पीडियाट्रिशियन है, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, ऑर्थोपेडिशियंस हैं, चेस्ट फिजिशियन है और ऑप्थल्मोलॉजिस्ट हैं।
मेला क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में 20-20 बेड की क्षमता वाले 8 छोटे अस्पताल भी संचालित हैं। अस्पतालों में दी जाने वाली सभी चिकित्सा सेवाएं निःशुल्क हैं। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज।
बिहार पुलिस ने प्रयागराज महाकुंभ में होटल और परिवहन समेत अन्य सेवाओं की ऑनलाइन बुकिंग के नाम पर हो रही धोखाधड़ी के प्रति लोगों को सचेत किया है। इस तरह की शिकायतें मिलने के बाद पुलिस मुख्यालय ने परामर्श जारी करते हुए लोगों को ऑनलाइन बुकिंग के समय सावधानी बरतने की सलाह दी है। परामर्श में कहा गया है कि गूगल सर्च से मिले किसी वेबसाइट, टोल फ्री नंबर या अन्य किसी नंबर पर भरोसा न करें। कुंभ मेले की आधिकारिक जानकारी कुंभ.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। साइबर अपराधों की शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर 1930 पर संपर्क कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 19 जनवरी को सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 118वीं कड़ी होगी। मन की बात कार्यक्रम के लिए लोग अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800117800 पर आज रात तक भेज सकते हैं। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस आयोजन के कारण मन की बात कार्यक्रम इस बार एक सप्ताह पहले निर्धारित किया गया है। प्रदेश के अधिकांश भागों में पश्चिमी विक्षोभ के कारण कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अधिकतम और न्यूनतम तापमान के बीच अंतर कम होने से लोगों को कनकनी का एहसास हो रहा है। आज रोहतास के डेहरी में सबसे कम न्यूनतम तापमान 8.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक ने बताया कि 19 जनवरी तक प्रदेश के अधिकांश जिलों में सुबह के समय हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा छाया रहेगा।
अगले तीन दिनों में राज्य के न्यूनतम तापमान में 2-3 डिग्री सेंटीग्रेड की गिरावट दर्ज की जा सकती है। तत्पश्चात कोई विशेष अंतर देखने को नहीं मिलेगा। राज्य के अगले तीन दिनों तक अधिकांश भागों में शीत दिवस की स्थिति बनी रह सकती है।
बिहार के चीफ पोस्टमास्टर जनरल अनिल कुमार ने आज पटना जंक्शन के पास स्थित 24 घंटे सेवाएं देने वाले नवीनीकृत स्पीड पोस्ट काउंटर का उद्घाटन किया। श्री कुमार ने बताया कि इस काउंटर पर तेज गति से पार्सल और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज भेजने की सुविधा होगी। इसके अलावा डिजिटल भुगतान की भी सुविधा उपलब्ध होगी।
5 लाख आर्टिकल रोज हम लोग डिलीवर करते हैं और मंडे को करीब 8 लाख आर्टिकल डिलीवर, और जो हमारी बुकिंग है पूरे राज्य से 2-3 लाख के बीच में, मोस्टली हम लोग 2-2.5 लाख करते हैं। मंडे के दिन ये करीब 3 लाख बुकिंग हो जाती है। यहाँ पर हम लोग के पास जो नंबर ऑफ अकाउंट्स है करीब 4 करोड़ है। और ऐसे बहुत सी चीजें जैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में हम लोग देश का 15% डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आज करते हैं। हम लोग देश के जो डिपॉजिट्स होते हैं, जैसे बिहार जैसे गरीब राज्य में पिछले साल 98,000 करोड़ का डिपॉजिट।
श्री कुमार ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि डाक सेवाएं त्वरित गति से लोगों को उपलब्ध कराने के लिए विभाग कृत्रिम बुद्धिमत्ता टेक्नोलॉजी AI के इस्तेमाल पर तेजी से काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि AI तकनीक के इस्तेमाल से डाक सेवा, आधार सेवा और पासपोर्ट सेवा की डिलीवरी सिस्टम मजबूत हो सकेगी।
जहां करोड़ों में आर्टिकल बट रहे हो, करोड़ों में पार्सल बट रहे हो, तो इतना बड़ा डाटा है, तो उसके लिए सबसे जरूरी है डाटा एनालिसिस, डाटा माइनिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। प्रक्रिया चालू है, पार्ट एंड पार्ट में हो रहा है, फुल होने में मुझे लगता है कि नेक्स्ट फुल फाइनेंशियल ईयर लगेगा।
सियालदह मंडल अंतर्गत रोड अंडर ब्रिज के निर्माण के मद्देनजर कई ट्रेनों के परिचालन को रद्द कर दिया गया है। कोलकाता पटना गरीब रथ एक्सप्रेस का परिचालन 21 से 26 जनवरी तक रद्द रहेगा। वहीं कोलकाता दरभंगा एक्सप्रेस 22 से 26 जनवरी तक रद्द कर दी गई है, जबकि आरा पटना स्पेशल भी 22 से 26 जनवरी तक रद्द रहेगी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, चौथे चरण में 80,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। पटना उच्च न्यायालय की मध्यस्थता के बाद राज्य की अदालतों में तृतीय और चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों ने हड़ताल समाप्त की। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने IGIMS पटना में बिहार झारखंड के सबसे बड़े कार्डियक कैथ लैब का किया उद्घाटन। और प्रदेश के अधिकांश भागों में पश्चिमी विक्षोभ के कारण ठंड में वृद्धि। मौसम विभाग का पूर्वानुमान, अगले 2 दिनों तक सुबह के समय छाया रहेगा घना कुहासा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ।